قرآن پر اپلائی ضرور کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں خوبصورتی اور اللہ کی محبت بڑھتی جائے. تباب کا لفظ جو فرعون کے لیے آیا, فرعون نے اپنے آپ کو سلولی کیسے ڈسٹروائے کیا. فرعون کا آپ معاملہ دیکھیں, وہ جس بچے سے ڈر رہا تھا اسی بچے کو اللہ کی پلاننگ کے حساب سے اسی بندے کے گھر کے سامنے پہنچا دیا گیا, اور اس نے اپنی سلولی ڈسٹرکشن کا معاملہ کیسے کیا. دا ڈیسیژن ہی ٹک کہ وہ اس بچے کو اپنے گھر میں پلنے کے لیے جو ہے وہ الاؤ کر دے گا. پھر کٹ اٹ شارٹ, موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرڈر ہو گیا غلطی سے, قتل خطا ہو گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ہیں مدین سے, تو آلدو ان کے خلاف فرعون کے دربار میں چارج شیٹ تھی, مگر اس نے ان کو پھر اپنے درباریوں اس کے ساتھ مل کر مرڈر نہیں کروایا, خود اپنی تباہی کیسے بلائی, اس نے موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس کے محل میں آ کے شکست دی, اس لیے کہ اللہ نے ان کو معجزات دیے تھے. اور فرعون نے اپنی تباہی کیسے بلائی کہ اس نے خود ہی پبلک سرمن کی دعوت دے دی کہ سب جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے, میں اس موسیٰ کا مقابلہ کراؤں گا. اس نے خود موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب کے جو معجزات تھے وہ دکھانے کے لیے بیٹل گراؤنڈ پرووائڈ کر دی. تو سلولی خود کو تباہی کی طرف لے کے گیا, اور جس جس کو وہ کانسٹنٹلی اپنی فتح سمجھ رہا تھا, جادوگروں نے اسی بیٹل فیلڈ کے اندر اسلام قبول کر لیا. تو یہ سارا سٹیج تھا جو فرعون اپنے ہاتھوں سے خود ہی سیٹ کر رہا تھا. دس از دا پروسیس آف تباب. اللہ کسی انسان کو تباب کے لیے پیدا نہیں کرتا. جسٹ کیپ دس تھنگ ان مائنڈ, انسان کی چوائسیز, انسان کے ڈیسیشنز اور انسان کی زندگی میں اس کی اپنی خواہشات کی طرف انکلینیشن اس کو تباب کی طرف لے کر جاتا ہے. جب وہ اپنی خواہشات کو ویلیو کرتا ہے اور اپنے رب کی بات کو بیک برنر پر ڈال دیتا ہے. دس از دی پرابلم. اللہ نے کسی انسان کو تباب کے لیے پیدا نہیں کیا. فرعون ہو یا ابو لہب ہو, ان کا اپنا ڈیسیجن تھا جس کی وجہ سے یہ اس تباب کا, اس ڈسٹرکشن کا, اس سلو ڈیتھ کا, اس سلو ڈسٹرکشن کا شکار ہوئے. تو یہ کیفیت ہے جس کو یہاں پر ڈسکرائب کیا گیا ہے. اب تباب فرعون کے لیے آیا اور تبت ابو لہب کے لیے آیا. آپ اس کو اگر اور ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو آپ میں سے جن کو عربی زبان پڑھنے آتی ہے, ابو بکر محمد الطیب باقلانی کی کتاب میں آپ کو اعجاز القرآن ان کی کتاب کا نام ہے الباقلانی کی, اور اس میں انہوں نے اس تباب کو اور فردر ڈسکس کیا ہے کہ قرآن میں یہ اور کتنے فارمیٹ پر آیا ہے. موونگ فارورڈ with next word of this ayah, with the next explanation. تبت ٹوٹ گئے. سو یہ مونس کا فیل ہے, فیل ماضی ہے, کیونکہ بد دعا کے لیے ہے اس لیے فیل ماضی ہے, فیوچر کے لیے گارنٹی شو کر رہا ہے اس لیے فیل ماضی ہے, اللہ کی طرف سے قرض ہے. تبت ٹوٹ گئے. کیا ٹوٹ گئے؟ یدا, دونوں ہاتھ. آپ میں سے جن کو عربی گرامر آتے ہیں, دیٹ واز ایکچولی یدانی. یہاں سے ایک نون ڈراپ ہو گیا ہے بیکاز یہ ایک مرکب ناقص بن رہا ہے. سو یدا کا ترجمہ ہوگا دونوں ہاتھ, یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. ناؤ آئی ول گیو یو فور میننگز فرام دا بلاغہ کہ یہاں پر یدا, دونوں ہاتھ کیوں مینشن کیا گیا ہے. اسپیسیفکلی ابو لہب کی شخصیت میں آیت میں ہاتھوں کو کیوں مینشن کیا گیا کہ دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ گئے. سو یدا از اباؤٹ دونوں ہاتھ, جس کو عربی میں ڈیول مثنی کہا جاتا ہے, اور یہاں پر اس کا نون ڈراپ ہے. میننگ نمبر ون جو اسکالرز مینشن کرتے ہیں کہ اللہ نے دونوں ہاتھوں کی بات کیوں کی ہے. ایک فرسٹ مفہوم جو اس کا آپ نے یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ یدا کا لفظ, یدئی کا لفظ, یہ عربی زبان میں فگیوریٹیولی استعمال ہوتا ہے. فگیوریٹیولی یو کین سے با محاورہ استعمال ہوتا ہے. جیسے اردو میں آپ بہت سے الفاظ با محاورہ بولتی ہیں. آپ کہتی ہیں میں آگ بگولا ہو گئی. فائن, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ آپ کو آگ لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اٹس این ایکسپریشن وچ یو آر شوئنگ دیٹ یو آر ان ایکسٹریم اینگر. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ایک رائے یہ ہے کہ یدا کا لفظ یا یدئی کا لفظ جو قرآن میں آتا ہے, اٹس اے فگیوریٹیو اسپیچ, یہ با محاورہ بولا جاتا ہے. اور اس میں جب بھی اس کو مینشن کیا جاتا ہے انسان کے ساتھ, تو اس مراد ہوتی ہے نفسہو, یعنی انسان پورے کا پورا اس سے مراد ہوتی ہے. انسان اپنے ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے. ٹھیک ہے, तो अरबी में नफ्सहू पूरे इंसान के लिए ही ये दोनों हाथ बोले जाते हैं, यानी बैना यदई कहा जाता है कुरान में तुम्हारे सामने, तो वो आप ही की बात होती है, यानी कि सिर्फ आपके हाथों के सामने, आपके आपके दो हाथ। अगर मैं आपसे, अब जाहिर बात है मैं आपके सामने नहीं इस वक्त बैठी हुई, बट इफ आई विल से कि आप इस वक्त अपने दोनों हाथ स्ट्रेच करें, जस्ट कीपिंग इन माइंड दैट नोबडी इज सिटिंग नेक्स्ट टू योर सोफा और नेक्स्ट टू योर सीट और नेक्स्ट टू योर चेयर, अगर आप अपने अकेली बैठी हैं और आप अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करें बाहर की तरफ, तो अब आपके दोनों हाथों के दरमियान में क्या है? आपके दोनों हाथ स्ट्रेच्ड हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके दोनों हाथों के दरमियान में क्या है, सो आपके दोनों हाथों के दरमियान में आप खुद हैं, नफ्सा। तो इसीलिए एक पहला मीनिंग इसका यदा का लिया जाता है एज अ फिगुरेटिव स्पीच, कि यदा जो है वो नफ्सा हु इंसान के लिए आता है, और इंसान पूरे का पूरा मुराद है, यानी अब ये इंसान जो भी काम करेगा, अल्लाह ने जब कहा तब्बत यदा, तो इसका पहला मफहूम के हिसाब से तर्जुमा या इसका एक्सप्लेनेशन बनता है कि अब ये इंसान जो भी काम करेगा उसके हर काम में तबाही है, उसकी हर चॉइस में तबाही है। उसने रसूल अल्लाह के मिशन को तबाह करने की कोशिश की, तो अब अल्लाह की तरफ से उसका पूरा नफ्स, उसकी पूरी जान, उसकी पूरी एग्जिस्टेंस ही अब तबाही है, डिस्ट्रक्शन है। दिस इज मीनिंग नंबर वन। और याद रखिएगा, कयामत से रिलेटेड आयात में भी आप पढ़ती हैं कि जब कयामत के दिन इंसान से पूछा जाएगा बीमा कद्दमत यदाक, कि आज तुमको वही जजा दी जाएगी जो तुमने आगे भेजा था, तो वहां पर भी यदा का जो लफ्ज आता है वो आता है कि इंसान ने जो कुछ अमल किया, बिकॉज इंसान हर अमल अपने हाथ से कर रहा होता है और अपने दो हाथों के दरमियान में फिगुरेटिवली हम इंसान होते हैं। तो एक मफहूम तो ये बनता है, अबू लहब का हर अमल डिस्ट्रॉयड है, अबू लहब की हर चॉइस डिस्ट्रॉयड है, अबू लहब की पूरी जिंदगी, उसकी पूरी एग्जिस्टेंस ही अब डिस्ट्रॉयड है। मीनिंग नंबर वन। मीनिंग नंबर टू, अरब में बहुत कॉमन था कि अरब यदा का लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे हाथों का, और उसमें अपने राइट हैंड को, सीधे हाथ को वेपन कहा करते थे, इसलिए कि वो कहते थे कि सीधा हाथ जो है, वॉरियर थे ना मेजॉरिटी, तो कहते थे सीधा हाथ जो है वो हमला करता है और जो उल्टा हाथ है वो डिफेंड करता है। तो ये दो हाथों का एक्सप्रेशन अरबी जुबान में क्लासिकल अरबिक में इस तरह भी इस्तेमाल होता था कि एक हाथ जो है उस एक वॉरियर की तरह, उसके हाथ में जैसे एक सीधे हाथ में तलवार है और उल्टे में शील्ड है, तो वो कहते थे इंसान के हाथ उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जब अल्लाह ने कहा तब्बत यदा कि उसके दोनों हाथ टूट जाएं, तो इससे मुराद क्या थी? एक्सप्लेनेशन नंबर टू विद दिस मफहूम स्कॉलर्स कहते हैं, यानी अब ना वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इस्लाम पर हमला कर सकेगा, और ना ही विल बी एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ, यानी उसका ऑफेंस भी खत्म और डिफेंस भी खत्म। ये मानी दूसरे एक्सप्लेनेशन के मुताबिक यदा में एम्बेडेड है कि अब वो एक ऐसा इंसान है जिसका डिफेंस और ऑफेंस दोनों खत्म हो गए। तीसरा मफहूम जो स्कॉलर्स बयान करते हैं जिक्रुल यदा से, वो कहते हैं जो आपको तावीलात में मिलता है, स्कॉलर्स लिखते हैं कि अरबी में वो कहते हैं आई तब्बत यदाहु आई दीनहु व दुनियाहु उलाहु व उकबाहु, यानी जब अल्लाह ताला ने तब्बत यदा कहा तो दोनों हाथ कहने से मानी ये था कि उसकी दुनिया, उसका दीन, जो कुछ वो कर चुका और जो कुछ वो करेगा उस सब का आउटकम तबाही है, उसके दीन और दुनिया का आउटकम तबाही है। दिस इज द थर्ड एक्सप्लेनेशन। आई दीन हूँ तब्बत यदा हूँ, यानी मुराद क्या थी यदा से? आई दीन हूँ व दुनिया हूँ, इंसान का एक हाथ उसकी दुनिया और इंसान का दूसरा हाथ उसका दीन होता है। इस इंसान का हाल ये था कि उसके दोनों ही हाथ टूट गए, दुनिया भी तबाह हुई और उसका दीन भी तबाह हुआ, जिसकी वजह से उसकी आखिरत भी तबाह हो गई। द फोर्थ एंड द लास्ट मफहूम ऑफ तब्बत यदा जो आपको क्लासिकल स्कॉलर्स की तफसीर में मिलती है और महमूद जमखशरी की किताब है अलकशाफ, उसमें उन्होंने मेंशन किया है, वो कहते हैं कि दोनों हाथों से मुराद ये है वल माना हलकत यदाहू, कि इसमें लिटरली मुराद ये है कि उसके दोनों हाथ हलाक होंगे, यानी उसके दोनों हाथों पर सबसे पहले डैमेज आएगा। और महमूद जमखशरी ने ये बात क्यों लिखी, तो वो एक जो है वाकया मेंशन करते हैं जिसमें वो लिखते हैं ली अन्ना हुफी मा युरवी अखद हिजरन ली यरमिया रसूल अल्लाह, वो कहते हैं कि एक मौके के ऊपर अबू लहब को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना गुस्सा आया था कि इसने एक पत्थर उठाकर रसूल अल्लाह की तरफ मारना चाहा था। और यकीनन अल्लाह के हबीब की तरफ पत्थर उठाकर मारना ये अल्लाह के गजब को दावत देने की बात है। तो अल्लाह ने इस बात के ऊपर इसको कहा तब्बत यदा, इसके दोनों हाथ टूट जाएं। सो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज फिगुरेटिवली, इंसान का पूरा नफ्स उसके दो हाथों के दरमियान में होता है। तब्बत यदा से मुराद पहली एक्सप्लेनेशन में यह है कि ये जो भी करेगा, जो अमल करेगा, वो सब इसको सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ धकेलेगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन आपको बताया कि एक अरब जो थे वो वॉरियर के तौर पर इस्तेमाल करते थे राइट और लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड को एज अ डिफेंस और लेफ्ट हैंड को एज अ ऑफेंस। अल्लाह ताला ने बता दिया कि अब ना इसको कोई बचा सकेगा और ना ये अपना मुकाबला कर सकेगा। द थर्ड मफहूम आपको बताया इसके अंदर के इसके इसकी दुनिया और इसका दीन, दोनों हाथों से मुराद दीन और दुनिया दोनों तबाह हो गए, स्लोली डिस्ट्रॉय हो गए। एंड द फोर्थ मफहूम महमूद ज़मख़शरी की तफसीर से कि उन्होंने कहा कि इसने एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर उठाकर मारना चाहा था, तो इन्हीं हाथों के लिए अल्लाह ने कहा कि इसके दोनों हाथ टूट गए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस आया तब्बत यदा अबी। द वर्ड अबी, इफ यू हैव मुसफ इन फ्रंट ऑफ यू और इफ यू हैव द आयात इन फ्रंट ऑफ यू, तो अबी का लफ्ज वही है जिसको आप अक्सर और बेशतर कभी पढ़ती हैं अबा, कभी पढ़ती हैं अबू, और यहां पर आया है अबी। आप लोग अक्सर ख्वातीन जो हैं वो सवाल करती रहती हैं कि कभी हदीस के उसमें लिखा होता है अबू बकर, कभी लिखा होता है अबी बकर, कभी लिखा होता है अबा बकर, तो ये क्यों होता है? सो दीज आर डिफरेंट स्टेट ऑफ द वर्ड, लफ्ज एक ही है जिसमें आप जो है वो अबू अबी या अबा कहें, लेकिन उसके सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल जुमले में कैसे हुआ है वो बताता है कि ये किस वक्त क्या इस्तेमाल होगा। फॉर द अरबिक ग्रामर स्टूडेंट दिस अबी इज हेयर बिकॉज इट इज मुदाफ एंड मुदाफ इलय, बिकॉज ये इस वक्त मजरूर है तो आपको इस वक्त ये अबी की फॉर्म में मिल रहा है। सो दिस माई दिस एलियन सेंटेंस इन द फ्रेंच सेंटेंस फॉर मोस्ट ऑफ यू इज फॉर द अरबिक ग्रामर स्टूडेंट, सो जस्ट रिलैक्स। ठीक है, तो अबी यहां पर आया है अबी लहबिन। अगेन आप देखें अबी लहबिन पूरे का पूरा यहां पर आ गया, उसका वही कुन्निया जो कि वो जिस नाम से पहचाना जाता था, जिस कुन्नियत से अबू लहब पहचाना जाता था, अल्लाह ने उसी कुन्नियत को इस्तेमाल किया। अबू लहब जो रसूल अल्लाह का चचा था, अबू लहब सिर्फ और सिर्फ अपने एक हैंडसम लुक की वजह से, अपनी एक फेयर और रेडिश कॉम्प्लेक्शन की वजह से उसका ये नाम था, उसकी ये टाइटल था, उसकी कुनियत थी, उसकी औलाद के साथ ये रिलेटेड नहीं था। सो बजाय इससे पहले कि मैं आपको रीजन बताऊं कि क्यों अल्लाह ताला ने उसको इस नाम से यहां मेंशन किया, जबकि हम ये पिछली क्लासेस में सीख आए हैं कि अरब कल्चर के अंदर ये कुनियत जो दी जाती थी ये ऑनर होता था, कॉम्प्लीमेंट होता था, तो अल्लाह ने उसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पर उसको आयत में क्यों एड्रेस किया है, जबकि हम जानते हैं कि उसकी खूबसूरती की एसोसिएशन इस कुन्नियत के साथ थी। इससे पहले कि मैं इस चैप्टर पर जाऊं, आई एम सो मच विलिंग टू गिव यू अ सिनॉप्सिस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द अंकल्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके सामने मैं तीन कैटेगरीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की रख दूं, इसलिए कि कल मुझे बतानी थी लेकिन टाइम कम था तो मैं मेंशन नहीं कर सकी। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो देखेंगी तो उनकी तीन कैटेगरीज बनती हैं। द नंबर वन कैटेगरी आपको अल्हम्दुलिल्लाह मिलती है आपके वो चचा, आपके वो अंकल्स जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनमें आप हजरत हमसा बिन अब्दुल मुतल्लिब देखती हैं जिनका टाइटल सैयदुश्शहदा भी आता है, असदुल्ला भी उनको कहा जाता था, असदुर रसूलिल्लाह भी कहा जाता था। बहुत बहादुर थे, बेस्ट बेस्ट वॉरियर, बेहतरीन तरीके से रसूलल्लाह से मोहब्बत करने वाले, ना सिर्फ आपके पिटर्नल अंकल बल्कि आपके फॉस्टर ब्रदर भी थे, आपके रजाई भाई भी थे। तो बेहतरीन तरीके से इस्लाम कबूल करने वाले, बहादुर, रसूलल्लाह से मोहब्बत करने वाले आपके चचा हजरत हमजा रदी अल्लाहु अन। दूसरी इसी कैटेगरी में जो आपके चचा आते हैं वो दूसरे चचा हैं आपके अल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल भी रखा, अपनी कराबतदारी का एहसास भी किया। ऑल्दो बदर के बाद इस्लाम लेकर आए हैं, बदर में अभी हम आगे पढ़ लेंगे कि बदर में इनके साथ मामला क्या था, लेकिन इन्होंने इस्लाम कबूल किया और अल्लाह के रसूल के साथ इनका एक काफी गहरा ताल्लुक था। तो ये पहली कैटेगरी है आपके वो चचा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और जो दिलो जान से आपसे मोहब्बत करते थे। दूसरी कैटेगरी जो कि स्कॉलर्स मेंशन करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अंकल्स में, वो जो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, नो डाउट एट ऑल आपसे बहुत मोहब्बत करते थे मगर इस्लाम कबूल नहीं किया, अबू तालिब बिन अब्दुल मुतल्लिब, हजरत अबू तालिब। अल्लाह ने उनका ऑल्दो स्टेटस यूं कहा जा सकता है कि सर्टन अंदाज में जरूर बाकियों से अलग रखा। यूं कहा जा सकता है कि अबू तालिब का अल्लाह ताला ने मामला थोड़ा सा अलग जरूर रखा। ऑल्दो हम जानते हैं कि जनरल कमांडमेंट फॉर द मुशरिकीन वो ये है कि रसूल अल्लाह को और मोमिनीन को उनकी दुआए मगफिरत के लिए रोका गया है, यानी अगर किसी नॉन मुस्लिम का इंतकाल होता है और वो मुशरिक है तो आप उसके लिए दुआए मगफिरत नहीं पढ़ते। हाँ, अगर वो जिंदा है आप उसको सारी दुआएं देंगी, आप हिदायत की दुआ देंगी, आप भलाई की दुआ देंगी, आप खैर की दुआ देंगी, आप बरकत की दुआ देंगी, जब तक कि वो हयात है आप उसको सब दुआएं देंगी ताकि अल्लाह अपने करम से आपकी कोई दुआ सुन ले और उसको जो है वो हिदायत मिल जाए। लेकिन जब उसका इंतकाल हो जाएगा तो आप उसके घर वालों को ज़रूर दुआ देंगी अब, बिकॉज़ वो जिंदा हैं, घर वालों को तसल्ली भी देंगी, लेकिन उस मुशरिक के लिए आप स्पेसिफिकली दुआए मगफिरत के अल्फाज जो हैं वो नहीं पढ़ेंगी। और हमें इसकी गाइडेंस कुरान से ही मिलती है, सूरत तौबा की आयत नंबर 113 है, 113 है, जिसमें अल्लाह ने फरमाया है। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट द फिकही इशू, दिस इज़ डायरेक्टली फ्रॉम कलामुल्ला। सूरत तौबा की आयत 113 में अल्लाह ने फरमाया है, वमा काना, ये मैं आपको बता रही हूँ जनरल स्टेटमेंट, जनरल कमांडमेंट फॉर ऑल द मुशरिकीन। ठीक है, अभी मैंने अबू तालिब वाला बात एक साइड पे रख दी है। वमा काना ली नबी वल्लदीना आमनू, ना ये अल्लाह के नबी के लिए है और ना ये उन लोगों के लिए है जो कि ईमान लाए हैं, अय यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तिगफार करें, मुशरिकीन के लिए दुआए मगफिरत करें। वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यना लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, चाहे वो उनके अपने करीबी रिश्ते ही क्यों ना हो मगर इसके बाद के उन मुशरिकीन के ऊपर उनकी दुनिया में हकीकत इस्लाम की खुल गई थी लेकिन उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट करना पसंद नहीं किया। लौ अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, इसलिए अल्लाह कह रहा है कि अब उनका ठिकाना आखरत में अल्लाह ने जन्नत के अलावा रखा हुआ है। सो ये दिस इज़ अ जनरल कमांडमेंट फॉर द मुशरिकीन। सही, रेस्ट ऑफ द जितना आपके जहन में ख्याल आ रहा है, कोई नेक इंसान है, बहुत गुड डीड्स किए हैं, बहुत फिलेंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ किए हैं, बहुत सोशल एक्टिविस्ट था, बहुत ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज में इन्वॉल्व था, वी हैव द आया इन फ्रंट ऑफ अस नाउ, रेस्ट ऑफ द मामलात व्हाट अल्लाह विल डू विद देम जस्ट लीव इट ऑन अल्लाह एंड ऑन देम, इट्स नॉट आर केस टू बी एडवोकेट और इट्स नॉट आर केस टू बी वरीड अबाउट। अल्लाह पर छोड़ दें उनका मामला, अल्लाह इंशाल्लाह उनके साथ बेहतरीन करेगा। जहाँ तक अबू तालिब की बात है, आपके चचा अबू तालिब जो कि सेकेंड कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो नो डाउट अल्लाह के रसूल के साथ बहुत जेन्युइन थे, नो डाउट आपसे बहुत मोहब्बत करते थे, द ओनली रीज़न कि ये इस कैटेगरी में हैं कि ये कलमा नहीं पढ़ सके थे, इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। लेकिन अगर आप इनके बाकी मामलात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखें तो इन्होंने अपने बेटों से भी बढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की, आपका ख्याल रखा, जब आपके वालिद नहीं रहे, आपकी वालदा नहीं रहीं, दादा नहीं रहे, हज़रत अबू तालिब ने ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली। और सिर्फ टेंजिबल चीज़ों में ज़िम्मेदारी नहीं ली थी, देखें एक होता है यतीम को प्रोवाइड कर देना, हो सकता है आप किसी यतीम को जानते हैं जिसको आप मंथली कुछ ना कुछ जो है वो अमाउंट भिजवा देते हैं, एक ये है, एक है उस यतीम के पास बैठना ताकि उसको माँ बाप की कमी महसूस ना हो, सो अबू तालिब ने सिर्फ, कहा जाता है कि टेंजिबल चीज़ों में, छत, कपड़ा, खाना प्रोवाइड करने में रसूल अल्लाह को मदद नहीं करते थे, बल्कि इससे बढ़कर आप कॉन्स्टेंटली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट में मौजूद होते थे, आपको डिफेंड करते थे, कुरैश के खिलाफ खड़े हो जाते थे अगर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी कहते थे. सो ही वॉज अ प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अबू तालिब की जब डेथ बेड के मोमेंट्स थे, यानी जब उनके इंतकाल का वक्त आया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कोशिश की कि आप किसी तरह से कलमा पढ़ लें. और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरेशंस के अल्फाज के मफहूम आते हैं कि आप अपने चचा से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चचा जान, आप एक मरतबा कलमा पढ़ लीजिए, आप एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, ताकि मैं आखिरत में आपको डिफेंड कर सकूं. बिकॉज अल्लाह के रसूल जानते थे ना कि उनके उनको भी सिर्फ उन्हीं लोगों की शिफात की इजाज़त दी जाएगी जिन्होंने जिंदगियों में ला इलाहा इल्लल्लाह को अडॉप्ट किया होगा. तो आप कहते रहे अपने चचा से कि प्लीज एक दफा आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए, ताकि आखिर में मैं आपको डिफेंड कर सकूं. इसी मवाके के ऊपर आता है, रिवायात बताती हैं कि जब आप रिक्वेस्ट कर रहे थे और हजरत अबू तालिब के अंदर शायद वो फीलिंग्स आ भी रही थी, उसी मौके के ऊपर ये जो हेड ऑफ कुरैश थे, ये जो लीडर्स ऑफ द कुरैश थे, ये आ गए और इन्होंने अबू तालिब को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अच्छा, सारी जिंदगी तुमने अपने आबा के मजहब पर गुजारी है और अब इस मौके पर उसको छोड़ दोगे. पूरी जिंदगी तो कुरैश का और अपने बनु हाशिम के लीनियज का फायदा उठाया, अपने आबा अजदाद के दीन का और उस लाइन का फायदा उठाया, और अब इस वक्त इस स्टेट पर आकर उनसे तुम जो है वो धोखा दे जाओगे, उनको दगा दे जाओगे. तो इमोशनल ब्लैकमेल था, स्कॉलर्स कहते हैं, जिसकी वजह से हजरत अबू तालिब आखिरी मौके पर ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कह सके. वरना आपके दिल में, कहा जाता है कि हजरत अबू तालिब के दिल में अल्लाह के रसूल की जितनी मोहब्बत थी वो इस मौके पर पढ़ जाते. लेकिन वही बात कि इंसान बाज़ औक़ात अपनी दुनिया की एलिजेंस की वजह से रब की एलिजेंस में फेल हो जाता है. सो वी नीड टू डिसाइड दैट वेयर आर अल्टीमेट एलिजेंस शुड गो. मेरी असल वफादारी, मेरी असल हमियत, मेरी असल लॉयल्टी किसके साथ होनी चाहिए. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत रंज का मौका था. अगेन, इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग फॉर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आपके चचा जो आपसे मोहब्बत करते थे और से आप बहुत मोहब्बत करते थे, वो अपने आखिरी सांसों में कलमा नहीं पढ़ सके. इसीलिए आपको अहादीस में मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को समझते हुए अल्लाह ने अपने हबीब को एक सेमी गुड न्यूज़ दी थी अबू तालिब के बारे में, कि अबू तालिब ने क्योंकि कलमा नहीं पढ़ा तो वो जहन्नुम में तो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका जो कुछ मामला था, मोहब्बत का, ख्याल का, सपोर्ट का, उनको प्रोटेक्ट करने का, तो मखलूकात में सबसे हल्की सज़ा, सबसे हल्की सज़ा हज़रत अबू तालिब को दी जाएगी. इसमें एक पॉइंट हम सब के लिए बड़ा वाज़े है, वो ये है कि हज़रत अबू तालिब जैसा मोहब्बत और प्रोटेक्शन का मामला हम में से कोई भी नहीं कर सकता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ. लेकिन याद रखें, उनको भी रसूल अल्लाह की सिर्फ मोहब्बत ने नहीं बचाया, या उनको भी अल्लाह के रसूल से सिर्फ मोहब्बत नहीं बचाएगी. सो वी शुड नॉट फॉरगेट कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ मोहब्बत का दावा, सिर्फ आपके मोहब्बत में नात पढ़ लेना और आपकी सुन्नतों को और आपकी हदीसों को वैल्यू ना करना, आपके अहकामात को जहाँ के आपके अहादीस में फेले अमर भी आया है, उनको अपने पैरों तले ज़िंदगी में रोंदते जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों को लिफ्ट ना कराना, और फिर ये समझना कि सिर्फ मोहब्बत का दावा करके हम बहुत आराम से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात और जन्नत हासिल कर लेंगे, देन इट्स कम्प्लीटली कम्प्लीटली अधोखा. इट्स अ डिल्यूजन, इट्स अ ट्रैप, और हमें अपनी ज़िंदगी में ही इस ट्रैप से बाहर निकल आना चाहिए. याद रखें,